कृष्ण। तो अक्रूर जीव पहुंच गए हैं वृंदावन नंदग्राम। व्रज भूमि में प्रवेश करने पर जब उन्होंने अपने प्रिय श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को व्रज में देखा तो भाव विभोर होकर अपने रथ से उतर के उस पावन व्रज रज में लौटने लगे। वो रज पावन है क्योंकि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श उनसे हुआ था। अक्रूर जी लौटते रहे दिव्य आनंद में। अपने भाव में उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की, भय को त्यागा, अपने घमंड या अहंकार को त्यागा और शोक को भी त्यागा। हित्वा दम्भम, दम्भ अर्थात अभिमान, हित्वा अर्थात त्याग देगा। तो अक्रूर जी ने अपने उच्च कोटि के जन्म आदि के विचार को त्यागा। अक्रूर ने यह नहीं सोचा कि मैं कंस जैसे शक्तिशाली राजा का एक निकट का व्यक्ति हूं, मंत्री हूं, मैं यदुवंशी हूं, इतना बड़ा व्यक्ति हूं, कंस इतना शक्तिशाली होने पर भी मुझसे इतने सम्मान से बात करते हैं, सम्मान पूर्वक कंस का व्यवहार मेरे साथ में रहता है, तो इतना सब होते हुए भी अक्रूर जी ने कोई परवाह नहीं की, क्योंकि समाज में प्रतिष्ठा जब किसी की होती है तो वो बहुत ध्यान से देखते हैं कि कहीं हमारी प्रतिष्ठा जो है वो नष्ट ना हो जाए। जितनी ज्यादा प्रतिष्ठा उतनी ज्यादा चिंता कि हमारा जो आदर सत्कार है समाज में वो खत्म ना हो जाए। जिसका कोई आदर नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई स्थान नहीं समाज में, वो कुछ भी कर ले भले उसे क्या खतरा है, परंतु जितने भौतिक दृष्टि से ऊंचे स्तर का व्यक्ति है उसे इतने ही उतना ही अभिमान होने की संभावना होती है, और जितना अभिमान है तो उतना ही डर रहता है कि कहीं हमारी प्रतिष्ठा समाप्त न हो जाए। कुंती महारानी इसलिए तो प्रार्थना करती हैं कि जिन व्यक्तियों के पास ऐश्वर्य होता है, सौंदर्य होता है, बहुत उच्च पद की शिक्षा आदि होती है, जन्म आदि होता है ऊंचा, तो उनको भगवान कृष्ण के शरण में जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो अभिमान इन चीजों से व्यक्ति के हृदय में आता है उसके कारण वो भगवान के शरण नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान के शरण जाने के लिए एक निस्सहाय भाव की आवश्यकता होती है। जब तक हमारे पास ऊंचा जन्म है, धन है, सौंदर्य है, बुद्धि है, बल है, प्रतिष्ठा है, ये सब चीजें हैं, तो हम सोचते हैं हम तो निस्सहाय नहीं हैं, हम इस काबिल हैं, इस योग्य हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान हम स्वयं कर पाएं, हम सक्षम हैं, इसलिए भगवान के शरण में जाने की क्या आवश्यकता है, और जाएं भी तो उतने निस्सहाय भाव से शरण ग्रहण नहीं करें। परंतु अक्रूर जी ने अपने अभिमान की भावना को त्याग दिया, हित्वा दम्भम, और लौटने लगे, इस बात का विचार नहीं किया तो कोई देखेगा तो क्या कहेगा। समाज में सबके लिए ये एक महत्वपूर्ण बात होती है, ये बात नहीं होती तो आजकल न जाने समाज में क्या होता है। समाज के डर से व्यक्ति थोड़ी सीमाओं के भीतर रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, तरह तरह के लोग डर के रहते हैं कि कहीं लोग बात फैल न जाए, अखबार में छप जाए। बड़े बड़े नेता भी होते हैं, डर डर के होते कि अखबार में पूछा न जाए। तो अग्रु जी ने परवाह नहीं कि कोई देखेगा तो देखने दो, कोई बात नहीं। कृष्णदास, बिंदास, मायादास, सदा उदास है ना। उसी तरह से अक्रूर जी को कोई डर नहीं था। एक साधारण ग्वाल बाल के चरण धूली में ये व्यक्ति लौट रहे हैं, लोग बोलेंगे कहां ये कंस का मंत्री और कहां एक साधारण किसी गांव के ग्वाले के चरण धूली में ये लौट रहा है। कहने दो अक्रूर जी की भावना, कोई बात नहीं, हम लौटने वाले हैं क्योंकि हमारे लिए ये सबसे बड़ा धन है। वृंदावन के निवासियों के लिए व्रज रज भगवान श्री कृष्ण के चरण के चिन्ह जो है वो सबसे बड़ा धन है, बहुत संभाल के इसे रखते हैं। फिर हितवा भीम अर्थात अपने भय को त्याग दिया। आखिर कंस तो बहुत शक्तिशाली था ना, दंड भी दे सकता था और अनेकों को अक्रूर जी के सामने ही बहुत भीषण दंड दिया। तो यदि कंस को पता चलता कि कंस के शत्रु कृष्ण के प्रति ऐसी भावना अक्रूर की है तो अवश्य कंस दंड देता अक्रूर को। अक्रूर ने अब तक कंस को ये बात बताई नहीं थी कि वो कृष्ण के भक्त थे। ऐसे कई बार हमारे भक्त जब इधर उधर रहते हैं, किसी अपने नौकरी के स्थान में हो या सामाजिक स्थान में हो या वो राजनीति में हो या सामाजिक जीवन में हो, कभी कभी नहीं बताते हैं कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ। बाद में पता चलता है। एक भक्त बता रहे थे, वो वकील थे, हैं वकील, तो एक न्यायाधीश के पास में सामने आते थे और वो न्यायाधीश बड़े ध्यान से सुनते थे। ये वकील जब जाते थे अदालत में अपने तिलक सब धारण करके जाते थे। फिर एक दिन जब उनसे मिले बाद में चल के बहुत कई सालों के बाद, तब उन्होंने बताया कि मैं भी दीक्षित भक्त हूं। और इसलिए क्योंकि अभी कोई न्यायाधीश है और उस पद में बैठा है, तो ऐसा एक वातावरण कुछ है आजकल समाज में कि यदि वो तिलक धारण करके बैठे वहां तो न जाने लोग क्या क्या कहेंगे आज के वातावरण में। तो इस डर से, क्योंकि ऐसे कई विषय आते हैं न्यायाधीश के सामने कि ये कहीं आरोप उनके ऊपर न लगाया जाए कि तिलक धारण करने के कारण ये पक्षपात कर रहे हैं इनके प्रति, या विशेष करके द्वेष इनका उनके प्रति है। परंतु भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा है कब वो दिन आएगा जबकि हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश भी तिलक धारण करके बैठेंगे बिना डर के कि कोई कौन क्या सोचेगा। तो खैर अक्रूर जी ने भी भय को त्याग दिया। कंस को दंड भी देना होगा, देने तो कर लेंगे स्वीकार जो भी है, लेकिन अब मुझे ये अनमोल सुनहरा मौका मिला है सबसे बड़ा धन प्राप्त करने के लिए, कृष्ण की चरण धूलि में लौटना, उसका लेप लगाना। अपने सारे शरीर के ऊपर उन्होंने लेप लगा लिया। जब हम ब्रज में जाते हैं तो कपड़ों की ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए, प्रणाम करते हैं तो धूल लग जाती है तो तुरंत हम फटफटाने लगते हैं कपड़ों को साफ करने के लिए, तो ब्रज ब्रज है तो थोड़ी देर के लिए रह भी तो कोई बात नहीं। जब श्री कृष्ण गायों को चरा के सायंकाल के समय लौट के आते हैं गांव में, तो बहुत सारे गाय होती हैं। आपको पता है कि नंद महाराज के पास 900,000 गाय थी, तो ये गाय जब आती थी तो उनके खुरों से धूली जो है वो उड़ जाती थी ऊपर, ब्रजवासीगण बहुत प्रतीक्षा करते रहते थे सुबह से, सायंकाल की राह देखते थे कि कब वो समय आएगा जब कृष्ण गौओं के साथ में यहाँ पर आएंगे। और उनको निशाने क्या मिलते थे, क्या लक्षण थे, वो अपने घरों के चंद्र शालिकाओं के ऊपर जाते थे। हर एक घर में चंद्र शालिका होती थी, अर्थात एक छत जैसे होता था, और ऊपर जाके वो देखते थे जिस दिशा से श्री कृष्ण के आने की अपेक्षा थी। और जब वो देखते थे कि धूल की कोई बादल जैसे दिख रही है, हाँ आ रहे हैं कृष्ण, इसलिए सायंकाल के समय को गोधूली कहते हैं। आज भी गोधूली के समय पे हम आएंगे वापस, कोई कहता है तो आपको पता चलेगा कि ये किस समय की बात कर रहे हैं, क्योंकि गोधूली जब गाय लौटते हैं सायंकाल में चरने के बाद गोचर भूमि में, तो वो धूली जब उड़ती है और वो एक बादल जैसे बन जाता था कृष्ण के समय। और कृष्ण जब वापस आते थे तो उनके बालों में ये धूल वगैरह लगी हुई होती थी, और इस धूली से उनका सौंदर्य और भी बढ़ जाता था। युद्ध भूमि पर भी जब श्री कृष्ण सारथी बने थे अर्जुन के, और वहां पर भी युद्ध भूमि का धूल जो है वो उड़कर उनके बालों में और उनके मुखारविंद में आया था, तो भीष्म देव को ये बहुत सुंदर लगा। कृष्ण जिस अवस्था में भी क्यों ना हो सुंदर ही लगते हैं, अति सुंदर लगते हैं। तो खैर अक्रूर जी ने अपने भय को त्याग दिया, साथ साथ हित्वा सुचम अपने शोक को भी त्याग दिया, दुख को। क्यों दुख किस बात की थी कि मैंने यदि ऐसे किया कि कंस के शत्रु के शरण में आया मैं, तो वहां मेरे परिवार का क्या होगा। हम लोग तो कंस के कृपा पे जी रहे हैं, अब कंस को पता चला कि मैं भक्त हूं कृष्ण का, तो मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, उनका क्या होगा। न जाने अब तक खबर तो पहुंची गई होगी कंस तक, जासूस तो उसके सब जगह फैले हुए हैं, न जाने मेरे परिवार का क्या किया होगा कंस ने। वो दुख भी त्याग दिया, वो चिंता त्याग दी, और निडर होकर बिना हिचकिचाए हुए, बिना संकोच किए हुए, अपने पूरे भाव से युक्त होकर वो लौटने लगे उस ब्रजराज में, और दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। और फिर जब आए अक्रूर जी, फिर भगवान श्री कृष्ण को देखा उन्होंने दूर से, और दूर से देखा तो कौन सा दृश्य था। तो आइए कृष्ण और बलराम का पहला दृश्य जो अक्रूर जी को हुआ, सुखदेव गोस्वामी कैसे वर्णन करते हैं जरा देखते हैं। तो ये दशम स्कंद के 38वें अध्याय का 25वां श्लोक है, 28वां श्लोक है, 28वां श्लोक है ऊपर। ददर्श कृष्णं रामं च व्रजे गोदोहनं गतौ, नीलांबरधरौ शरद अंबुरुवेक्षणौ, शरद अंबुरुवेक्षणौ। ददर्श उन्होंने देखा अक्रूर जी ने, किनको देखा, कृष्णम रामम च, कृष्ण और राम। कौन है ये राम, बलराम, बलराम का और एक नाम राम है। तो कृष्ण और बलराम को ददर्श अक्रूर जी ने देखा, वो क्या कर रहे थे, व्रजे गो दोहनम गतौ, व्रज में गो दोहन करने के लिए गदौ जा रहे थे। जब औ अंत आता है तो ये द्विवचन है, तो हम जब समझ सकते हैं कि दो व्यक्तियों की बात हो रही है, क्योंकि कृष्णम और रामम दोनों की बात हो रही है। तो उनको ब्रज में देखा, वो क्या कर रहे थे, गाय का दोहन करने जा रहे थे। पीत नीलांबर धरो, एक जो है उन्होंने पीतांबर धारण किया हुआ था, वो कौन है, कृष्ण, और दूसरे है बलराम, उन्होंने नीलांबर धारण किया हुआ था, नीले रंग की धोती, और श्री कृष्ण ने पीले रंग की धोती धरो मतलब धारण किया हुआ था। शरद अम्बुरुहु इक्षणौ अर्थात फिर से द्विवचन, दोनों की आंखें कैसे थी, अम्बुरुहु कमल के समान, परंतु केवल साधारण कमल नहीं, शरद अम्बुरुहु इक्षणौ, शरद ऋतु का जो कमल होता है वैसे। अब ये अम्बुरुहु क्या चीज है, अम्बु अर्थात जल और रुहु मतलब जो जिससे उत्पन्न होता है, तो जल जैसे कोमल का नाम है जलज नीरज इत्यादि, तो ये अम्बुरुह यही अर्थ है। तो अम्बु और रुह जैसे कि हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, इस एक शब्द कमल के लिए सैकड़ों और अर्थ हैं या शब्द हैं संस्कृत भाषा में, और तरह तरह से आप शब्दों को जोड़कर भगवान के दिव्य सौंदर्य का वर्णन कर सकते हैं। यह है संस्कृत भाषा का सौंदर्य, कोई सीमा नहीं है इसमें, कैसे आप वर्णन करना चाहेंगे। जब अनंत भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करना है तो ऐसी भाषा भी चाहिए ना जो अनंत हो, जिस भाषा में सीमाएं तरह तरह की हों, उनमें भगवान का वर्णन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे ये कमल शब्द के लिए कितने शब्द हैं, तो अम्बुरुहु एक क्षणों, तो उनकी आंखें एक क्षणों मतलब आंखें, दोनों की आंखें ऐसे थीं कि मानो शरद ऋतु के खिले हुए कमल पुष्प। अब प्रश्न ये आता है कि केवल शरद ऋतु की बात यहाँ क्यों की गई है, हम तो सुन चुके हैं कि भगवान के दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना कमल से की जाती है, परंतु यहाँ शरद ऋतु के कोमल कमल की बात क्यों की गई है। प्रभुपाद जी इसका उत्तर देते हैं, चौथे स्कंध में श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है जिसमें कि राजा प्राचीन परिषद के जो पुत्र हैं 10 प्रचेत, ये प्रचेत गण अपने पिता के आदेश अनुसार तपस्या करने जाते हैं वन में। जब वो गए हुए होते हैं तपस्या के लिए, तो वहां पर महान वैष्णव शिवजी आते हैं, उनके सौम्य स्वभाव को देखकर, उनके सात्विकता को देखकर प्रसन्न होकर शिवजी उनका उद्धार करना चाहते हैं और उनको एक गीत वो सिखाते हैं। वो गीत तो क्या, वो तो भगवान का गुणगान है, उसमें भगवान श्री कृष्ण का, शिवजी भी तो भगवान के महान भक्त हैं। तो इस अध्याय को रुद्र गीत कहते हैं, जो गीत भगवान शिव जी ने गाया था, प्रचेताओं को सिखाया था, और प्रचेताओं ने फिर इस गीत को गाकर अपना जीवन सफल बनाया, स्वयं भगवान ने उनको दर्शन दिया जल के भीतर जहां की वो तपस्या कर रहे थे। तो इस गीत में शिव जी कहते हैं, पदाशरत पद्म पलाश रोचिश, वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो चरण कमल है, चरण है, पद्म पलाश रोचिशा, रोचिशा मतलब बहुत ही मनोरम है, बहुत ही आकर्षक है, पलाश अर्थात पंखुड़ियां, तो भगवान के जो पदा भगवान के जो पद हैं वो कमल पुष्प के पंखुड़ियों की तरह आकर्षक हैं, परंतु किस तरह के कमल पुष्प? शरद, शरद ऋतु के कमल पुष्प। तो शरद ऋतु का है क्यों? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि प्रकृति के नियम से जब शरद ऋतु आता है तो उस समय जो जलाशय होते हैं जैसे सरोवर आदि, उनमें वर्षा ऋतु में एकत्र हो जाने कीचड़ मिट्टी आदि सब धुल जाती है, और इसलिए जो उस समय उस स्वच्छ जल में जो कमल पुष्प प्रकट होते हैं वो और भी अधिक सुंदर दिखाई पड़ते हैं। इसलिए साधारण कमल पुष्प तो वैसे भी सुंदर होता है, और शरद ऋतु का जो कमल है वो और भी सुंदर होता है। और श्रेष्ठ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शब्दों में, वचनों में भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करना चाहिए। तो देखिए यहाँ कितनी सारी उपमाएं आदि इनका प्रयोग किया जाता है कृष्ण की तुलना के लिए, परंतु तो हमें जानना है कि भले हम जो भी तुलना क्यों ना प्रयोग करें वो कम ही पड़ेगा, क्योंकि श्री कृष्ण का हर एक गुण दिव्य है और श्री कृष्ण अनंत है। भले जितना भी हम हमारे बुद्धि से हमारे भाषा आदि के माध्यम से श्री कृष्ण का वर्णन करने का प्रयास करेंगे, हम पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, ये संभव नहीं है। फिर भी प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है। शास्त्रों में इस प्रयास को चंद्र शाखा न्याय कहा गया है। जब माँ कभी अपने बच्चे को चांद दिखाना चाहती है तो बच्चा इधर उधर देखता है, बच्चे को पता नहीं चलता, तो माँ एक जगह जाती है जहां एक पेड़ के दो शाखाओं के बीच में से चांद दिखता है। तो वो जाके माँ कहती है, देखो वो दो शाखा है ना, उसके बीच में देखो, वहां चांद है। वैसे चांद तो शाखाओं के बीच में नहीं है, चांद तो अपनी जगह में है, बहुत दूर है पृथ्वी से, परंतु दृष्टिकोण कुछ ऐसा है कि हमें अब उस माँ को बच्चे को दिखाना है चांद उस दो शाखाओं के बीच में से वो चांद दिख पड़ता है। तो ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण अतुलनीय हैं, अद्वितीय हैं, अवर्णनीय हैं, संपूर्ण तरह से वर्णन नहीं हो पाता, फिर भी हम प्रयास करते हैं। मानो जैसे तोतल का बच्चा जो है वो कुछ गुणगान करना चाहता है किसी की, वो क्या बोलेगा बेचारा, फिर भी प्रयत्न करता है, और जब वो करता है तो माता पिता बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे की तोतली बोली को सुनना तो सभी लोग पसंद करते हैं। तो उसी तरह से हम जो साधारण व्यक्ति है भगवान का गुणगान क्या कर सकते हैं, फिर भी कुछ प्रयास करने से भगवान हमारी तोतली जो बोली है उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि उसके पीछे कुछ भावना है और भगवान भावग्राही जनार्दन है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी एक बहुत अनुभवी और शुद्ध भक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं, निकट के भक्त हैं, इसलिए सुखदेव गोस्वामी का वर्णन तो अवश्य भगवान को बहुत पसंद है। भगवान को सुनना बहुत अच्छा लगता है। फिर भी ये जो शब्द हैं आखिर इस दुनिया के शब्द हैं, ये उदाहरण है, ये दुनिया के उदाहरण है। जब ऐसे कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की चेहरे की कांति जो है वो एक अभिनव जलधर सुंदर है, अभी अभी बना हुआ जो बादल है बारिश का, उसका जो रंग है वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का रंग है। फिर भी ये एक केवल संकेत मात्र है, बस एक इशारा मात्र है, वास्तव में हम नहीं जान सकते जब तक कि हम अपने आंखों के सामने भगवान को नहीं देखेंगे। तो इस दुनिया के वस्तुओं से हम भगवान की तुलना पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ी बहुत जानकारी देने के लिए ऐसे किया जाता है। तो भगवान की तुलना कुंती देवी कमलों से करती है, वो प्रसिद्ध श्लोक है। आशा करते हैं आप में से अनेक भक्तों को कंठस्थ हुआ ही होगा। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। मैं नमन करती हूँ, कुंती महारानी कहती हैं, उस कृष्ण के, उस कृष्ण को मैं नमन करती हूँ जिनकी नाभि कमल के समान है। मैं नमन करती हूँ उस कृष्ण को जो कमल माला भी पहनते हैं। मैं नमन करती हूँ उस कृष्ण को जिनकी आंखें भी खिले हुए कमल पुष्पों के समान हैं। और मैं नमन करती हूँ कृष्ण को जिनके चरण, जिनके कमल जो है वो भी, जिनके चरण हैं वो भी कमल के समान बहुत सुंदर हैं। लेकिन केवल कमल कहना, यद्यपि कमल बहुत सुंदर और पवित्र फूल होता है, फिर भी कमल मात्र कहने से बात पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है। कमल के गुण अपने आप में बहुत विशेष हैं। प्रभुपाद जी एक जगह अपने श्रीमद् भागवत के तात्पर्य में कहते हैं, जब मैत्रेय मुनि भगवान श्री कृष्ण का वर्णन बहुत सुंदर तरह से कहते हैं, उनके चरण कमलों का वर्णन और कमल पुष्प से तुलना करते हैं, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति बहुत थका हुआ होता है और कमल पुष्प को देखता है तो उसकी थकावट दूर हो जाती है। क्योंकि कमल पुष्प जिस वातावरण में होता है, किसी जलाशय में बहुत धीर समीर या हल्की हल्का पवन बह रहा होता है, सुगंध होता है हवा में, ये रमणीय स्थान होता है और कमल पुष्प को देखने से मन प्रसन्न हो जाता है, थकावट दूर हो जाती है। और ठीक उसी तरह से जब कोई व्यक्ति जो कि बद्ध अवस्था में है और इस भवसागर में रह के अति पीड़ित है, तरह तरह के कष्टों को झेल के तंग आ चुका है, हैरान हो चुका है, तो जब वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को देखता है, उनके चरण उनके मुखारविंद को देखता है, उनकी आंखों को देखता है जो कि कमल पुष्प के समान खिले हुए हैं, तब उसका जो उस हृदय में जो ताप है, जो पीड़ा है, वो नष्ट हो जाती है। तो खास करके संसार में पीड़ित व्यक्तियों को निमंत्रण है कि आप आइए, अपने पीड़ा को दूर हटाइए। दुनिया के विज्ञापन जो होते हैं कि आप ये लीजिए आपकी पीड़ा दूर होगी, उनमें विश्वास नहीं कीजिए। बस ये सिगरेट पीजिए, देखिए आपको आनंद आ जाएगा। ये शराब पीजिए, आप जीवन में मस्ती आपको मिलेगी। आप ऐसे कीजिए, ये गाड़ी खरीदिए, सब ठीक ठाक हो जाएगा। पर ऐसा कोई चित्र दिखाते हैं जिसमें दो लोग बहुत प्रसन्न हैं उस चीज, उस पदार्थ का प्रयोग करके, नहीं, ये सब मिथ्या है, झूठ है। पीड़ा से वास्तव में मुक्त होना है, और कौन पीड़ित नहीं है। आज ही हम कोल्हापुर में थे तो राधेश्याम प्रभु वहां बता रहे थे सुंदर बात, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं एक जगह कि संसार के लोग इतने भ्रम में पड़े हैं कि अपने दुख में रमण करते, अपने दुख में आनंद लेते हैं। दुखद अवस्था में होते हुए भी अपने आप को बहुत आनंदित समझते, वाह कितना सुखी हूं। जहां भी जाएंगे लोग उनको पूछे, कैसे ठीक हो? बिल्कुल कहां ठीक है, जब जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, तरह तरह के कष्ट एक के बाद एक लगातार आते रहते हैं जीवन में, कहां का सुख है ये? चंद क्षणों के लिए कुछ इधर उधर का सुख मिल जाता है जिसमें हमारे दुख को हम थोड़े समय के लिए मात्र भूल जाते हैं, उसको जीवन का ध्येय बना लेते हैं, परंतु वास्तव में हमारे दुखों से राहत चाहिए तो उस कमल के पास जाना चाहिए जो भगवान के चरण है, भगवान की आंखें हैं, भगवान का मुस्कान है, भगवान का मुख है। और तुलना की बात जब आई, क्योंकि वैष्णव जो होते हैं वो कवि होते हैं, तो कवि अच्छे से अच्छी तरह किसी चीज का वर्णन करना चाहता है, तो सुखदेव गोस्वामी भी सोच रहे हैं कि केवल कमल से जब वर्णन किया है तो इतना पर्याप्त नहीं है, कुछ कमी है। तो इसलिए उन्होंने शरद ऋतु की बात की कि शरद में जो कमल है वो और भी ज्यादा खिला हुआ है, बहुत सुंदर लगता है। इसी तरह से श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 20वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने वृंदावन के वर्षा ऋतु और शरद ऋतु दोनों का वर्णन किया है। वैसे देखा जाए तो जो साल में 6 ऋतु होते हैं उनमें से 2 सबसे सुंदर माने जाते हैं, एक है शरद ऋतु और दूसरा है वसंत ऋतु। परंतु इन दोनों में से भी शरद ऋतु को और भी सुंदर माना जाता है, क्योंकि शरद ऋतु की सबसे महत्वपूर्ण और इसका सबसे आकर्षक आभूषण है श्री कृष्ण की बांसुरी, जबकि वो वहां शारदीय रास यात्रा है, रास लीला करते हैं। वो रास लीला वसंत ऋतु में भी करते हैं, इसको वासंती रास कहते हैं। परंतु जो शरद ऋतु में की जाती है वो रास लीला, वो और भी विशेष मानी जाती है। और शरद ऋतु के ऐसे अनेक आभूषण हैं, जैसे तुलसी है, वो तो वृंदावन के आभूषण है, और ऐसे कमल पुष्प। तो कमल पुष्प जिस तरह सुंदर दिखते हैं शरद ऋतु में, अन्य ऋतु में इतने सुंदर नहीं दिखते। इसलिए जब आप तुलना कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की, तो वो शरद ऋतु के कमल की बात करते हैं। और इस 20वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी इस शरद ऋतु के वर्णन करते समय कहते हैं, शरदा नीरजोत्पत्या, कि शरद ऋतु में ये जो कमल पुष्प होते हैं उनका मानो पुनः कोई एक नया जीवन सा आ जाता है। जिस तरह से जब एक योगी होता है, जब योगाभ्यास आदि कर रहा होता है, चेहरे पे तेज होता है, वो बड़ा प्रसन्न रहता है, हृष्ट पुष्ट रहता है, और योगाभ्यास जब छोड़ देता है तो उदास सा हो जाता है, उसके चेहरे से तेज चले जाता है, लेकिन पुनः अपने योगाभ्यास को प्रारंभ करने पर फिर से वो चेहरे में तेज, वो मुस्कान, वो आनंद आ जाता है। तो ठीक उसी तरह है, जब कमल पुष्प वर्षा ऋतु में रहता है तो उस समय सब जगह कीचड़, मिट्टी, पानी बह रहा है, वर्षा, मूसलधार वर्षा हो रही है, उस समय कमल पुष्प का सौंदर्य इतना दिखाई नहीं पड़ता। परंतु वर्षा ऋतु जब समाप्त हो जाती है तो मानो कि ये कमल पुष्प पुनः जीवित हो जाता है, पुनः चमकने लगता है अपने पूरे सौंदर्य से। तो ऐसी एक उपमा देते हैं सुखदेव गोस्वामी। और दोबारा इसी अध्याय में, 20वें अध्याय में आगे चल के वो कहते हैं, उधरिष्यन् वारिजानि सूर्योत्थने कुमुद्विना। इसका मतलब है कि जो कमल पुष्प होते हैं वो शरद ऋतु के स्वच्छ पवित्र जल में, जिसमें कोई कीचड़ नहीं, मिट्टी नहीं, सूर्य की किरणों को पाके अब खिल उठते हैं। अब वर्षा ऋतु में सूरज की किरणें इतनी तेज नहीं होती हैं, क्योंकि बादल इतने घने घने बादल होते हैं आसमान में। परंतु जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है और शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है, उस समय ये घने बादल चले जाते हैं और ये सफेद बादल आते हैं, या आसमान का नीला रंग दिखाई पड़ता है, तो सूरज की रोशनी काफी कड़ी हो जाती है उस समय। तो ऐसे सूरज की रोशनी से, किरणों से जो ऐसे कमल पुष्प हैं, वारिज, यह और एक शब्द कमल के लिए इस्तेमाल किया है, वारिज, कितना एक काव्यात्मक, कितनी काव्यात्मक भाषा है ये संस्कृत। वारे अर्थात जल, और जल मतलब जन्म लेने वाला, केवल जल से जन्म लेने वाला। तो जल के लिए जितने शब्द हैं आप देखिए और उससे जल लगाइए, बस कितने सारे नाम आपके हो जाएंगे। तो वारी जल, जैसे जल अजल, नीर अजल, उदकजा, तो वारे जाने मतलब, जाने मतलब बहुवचन, तो अनेक ऐसे वारे जो हैं, तो ऐसे अनेक वारे जो हैं वो सूर्य की किरणों से वो खिल उठते हैं। और उस समय ये जो कुमुद होता है, ये भी एक प्रकार का कमल होता है, वो खिलता नहीं ज्यादा, क्योंकि कुमुद जो है वो केवल रात के समय खिलता है। अब देखिए ये बड़ा विषय है अपने आप में, कमल को यदि हम कमल के बारे में कुछ जानना चाहेंगे तो ये अपने आप में एक विषय है। वैसे हम कमल शब्द जब कहते हैं हम सोचते हैं एक फूल के बारे में, परंतु नहीं, कमल शब्द का संबोधन होता अनेक तरह तरह के फूलों से, तरह तरह के कमल पुष्प होते हैं। ये कमल परिवार होता है, उसमें भाई बहन भी होते हैं, चचेरे ममेरे भाई बहन भी होते हैं। जैसे नीलोत्पल, ये नीले रंग का होता है। फिर कोई ऐसे कमल होते हैं जो लाल रंग के होते हैं, कोई सफेद रंग के होते हैं, तरह तरह के बीच वाले भी रंग अनेक होते हैं ऐसे। कोई दिन में खिलने वाले होते हैं, कोई रात में खिलने वाले होते हैं, कोई जल के ऊपर ही रहते हैं बिल्कुल पत्र के ऊपर, और कोई ऐसे होते हैं जो जल के ऊपर आते हैं, जल का स्पर्श नहीं करते हैं। खैर ये इतना विषय तो है नहीं, तो सारा प्रवचन कमल के ऊपर ही निकल जाएगा। वैसे भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि कमल इतना महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए, हर चीज की तुलना कमल से की जाती है। तो खैर ऐसे कुमुद ये भी एक प्रकार का कमल है जो रात को खिलता है। मेरे ख्याल से ये लाल रंग का है, निश्चित नहीं है, लेकिन शायद ये लाल रंग का है। तो खैर ऐसे तरह तरह के ये रात को खिलते हैं, इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि शरद ऋतु के आने पर जो कड़ी धूप है उससे ये वारिज जो है ये खिल उठते हैं, कुमुद आदि फिर वो बैठ जाते हैं, उदास हो जाते हैं। और उपमा देते हैं एक ऐसे राज्य की सुखदेव गोस्वामी, जिसमें एक बहुत शक्तिशाली राजा हो और धर्मपरायण हो, और उसके राज्य में चोर लुटेरे डकैत जो होते हैं उनका पूरी तरह से दमन किया हुआ होता है, और इसलिए जो प्रजा है वो सुरक्षित रहती है और सुखी रहती है, उनको कोई चिंता नहीं होती, बड़े प्रसन्नता से रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस राजा के राज्य में कोई चोरी नहीं होगी, हम यूं ही रात को भी ऐसे इधर उधर बिना डरे हुए घूम सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी तुलना करते हैं, वो कहते हैं कि सूर्य के किरणें जो है शरद ऋतु के, वो कैसे राजा के बराबर हैं जो बहुत सख्त हैं, बहुत बलवान हैं, धर्मपरायण हैं, और कुमुद आदि है वो चोर की तरह जो मुरझा जाते हैं, कुछ रहते नहीं, बाहर नहीं आते, प्रकट नहीं होते, खिलते नहीं। और ये मारे जो कमल पुष्प हैं वो ऐसे मानो प्रजा जो बहुत प्रसन्न है कि अब हम इतने सुरक्षित हैं। तो भगवान के भक्त जो होते हैं, भगवान के चरण कमल जब खिल जाते हैं भक्ति भाव में, भक्ति भाव के किरणों में, तो और भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो खैर ऐसे सुंदर उपमाएं एक के बाद एक यहाँ दी गई हैं। ये ऐसे विषय हैं कि इनके बारे में और भी विस्तार विस्तार में जाया जा सकता है, परंतु समय की पाबंदी तो सब जगह होती है, इसलिए खैर कमल पुष्प के ऊपर अधिक और न कह के विषय को आगे बढ़ाया जाए। कृष्ण ऐसे विषय हैं कि बस एक भी कोई बात लीजिए कृष्ण के बारे में और उसको बस बात करते रह सकते हैं, करते रह सकते हैं। अब रही बात यहाँ व्रजे गो दोहनम कतो, तो कृष्ण और बलराम गाय का दोहन करने के लिए जा रहे थे, कहाँ पे? व्रजे, व्रज। ये व्रज शब्द का अर्थ क्या है? साधारण संस्कृत भाषा में देखा जाए तो व्रज का मतलब है कि जाना, जाओ। ये शब्द कहाँ आता है भगवद गीता में बताइए, प्रसिद्ध श्लोक में, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जाना, अर्थात भगवान कहते हैं आना, मेरे शरण में जाना हे अर्जुन, एकमात्र मेरे शरण में जाना। तो व्रज का मतलब है जाना। तो कहां जाना, किसे जाना है? गायों को जाना है, क्योंकि इस भूमि में गाय जाती हैं, अर्थात गाय चरती हैं। गाय अपने गांव से जाती है वन में चरती रहती हैं ये गाय, क्योंकि वृंदावन जो है ये तो गायों की भूमि है, ये गोकुल है, गोलोक है, गोवर्धन है। तो गायों को जो गोचरण भूमि है ये, इसलिए गायों का जाना व्रज, इसे फिर इस भूमि को ही व्रज कहते हैं, व्रज भूमि वृंदावन। तो वृंदावन क्यों कहते हैं इस भूमि को, इसके लिए भी इसके पीछे भी कई कारण हैं। वृंदा देवी जो कि तुलसी महारानी है, वृंदा देवी तुलसी के रूप में यहाँ प्रकट होती हैं, और व्रज भूमि में सब जगह तुलसी दिखाई पड़ते हैं। बहुत धन्य है वो भूमि क्योंकि तुलसी है सब जगह, इसलिए हर एक घर में तुलसी होनी चाहिए। कम से कम गृहस्थों को चाहिए कि अपने घर में तुलसी मैया की सेवा अवश्य करें। मंदिरों में तो यहाँ तुलसी पूजा प्रतिदिन होती है, तो क्योंकि तुलसी वन सब जगह फैले हुए हैं, इसलिए वो वृंदावन, वृंदावन अर्थात तुलसी वन। और तुलसी का स्थान भगवान कृष्ण के भक्ति में विशेष है, आप सब तो जानते ही हैं। तुलसी के बिना भक्ति नहीं की जा सकती, भगवान को भोग अर्पण नहीं किया जा सकता, भगवान के चरण कमलों में फिर हम चंदन के लेप लगाकर क्या अर्पण करेंगे, तुलसी मंजरी, तुलसी दल आदि न मिले तो। साथ साथ में तुलसी के हार भी भगवान को पहनाने हैं। वृंदावन शब्द का दूसरा अर्थ है कि वो स्थान है जहां वृंदा देवी महारानी है, वृंदावनेश्वरी। वैसे राधा रानी है लेकिन योग माया या इनको भी हम कहते हैं, वृंदा देवी को भी कहते हैं, क्योंकि वृंदा देवी राधा रानी और कृष्ण के मिलन के लिए सदैव योजनाएं बनाती रहती हैं, व्यवस्था करती रहती हैं। वृंदा देवी के अनेक दूत होते हैं, तोते होते हैं, सब जगह खबर लेते रहते हैं क्या हो रहा है वृंदावन में, कहां क्या चीज हो, कुटिला क्या कर रही है, जटिला क्या कर रही है, और खबर आके पहुंचाते हैं ताकि राधा कृष्ण की लीलाएं और भी मधुर बनाए जा सके। तो इसलिए ये नाम है वृंदावन। और एक तीसरा कारण भी है, व्रज का और एक वृंद का और एक अर्थ होता है दल। जैसे भक्त वृंद हम कहते हैं, तो भक्त वृंद अर्थात भक्तों का समूह, भक्तों का दल। तो कौन से दल? तरह तरह के दल वहां रहते हैं, गोपियों के वर्ग हैं, गोपी वृंद हैं, गोप वृंद हैं, गायों के वृंद हैं, इसलिए वृंदावन। तो ये है भगवान कृष्ण की भूमि व्रज या वृंदावन या गोलोक, गोकुल, ऐसे कई नाम हैं। तो ऐसे स्थान में अक्रूर जी ने कृष्ण और बलराम को देखा गाय का दोहन करते समय, या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं या तो वो जा रहे होते हैं या अपने उस समय कर रहे होते हैं गाय का दोहन। गाय इतने आसक्त हैं कृष्ण से कि जब तक श्री कृष्ण प्रातः काल में उठकर पहली बार दोहन नहीं करे उनको, वो अन्य किसी को हाथ लगाने नहीं देते। तो सुबह से वो अपनी आवाजें करना शुरू कर देते हैं, फिर सब लोग कृष्ण के घर के सामने खड़े हो जाते हैं, अरे कृष्ण उठो, अब गाय जो है वो राह देख रही है। तो कृष्ण उठते हैं, माता यशोदा उठा देती हैं, मुख प्रक्षालन करके फिर वो जाते हैं, गाय का दोहन करते हैं। पहले गाय को बड़े प्रेम से स्पर्श करते हैं, गायों के चेहरे जो है वो प्रसन्नता से खिल उठते हैं, जैसे कमल पुष्प शरद ऋतु में खिल उठते हैं, और फिर बड़े प्रेम से दोहन करते हैं भगवान श्री कृष्ण। कभी कभी बाल्टी को अपने घुटनों के बीच में ऐसे रखते हैं और फिर दोनों हाथों से ऐसे ऐसे दोहन करते हैं। तो खैर ये भगवान श्री कृष्ण गोपाल हैं, तो ये तो उनका मुख्य कार्य है ही। पीत नीलांबर धरो, तो पीत रंग या पीतांबर धारण करते हैं भगवान कृष्ण और नीलांबर बलराम जी। वैसे भगवान श्री कृष्ण का वेश तो है, तरह तरह के वस्त्र पहनते हैं, हो सके समय हो तो हम आगे भी चर्चा करेंगे अब। और फिर आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, याद रखिए कि अक्रूर जी क्या देख रहे हैं इसका वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं। किशोरौ श्यामल श्वेतौ, तो दोनों किशोर अवस्था में, औ औ मतलब फिर से द्विवचन, तो किशोरौ मतलब दो किशोर हैं वहां पे, तीन चार नहीं या एक भी नहीं, दो हैं कृष्ण और बलराम, तो दो किशोर हैं वहां पे, किशोर अवस्था। इस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण सबसे सुंदर दिखते हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य और उनके गुण अनंत हैं, फिर भी उस परिपूर्णता की अवस्था में भी उनका सौंदर्य बढ़ते रहता है, बाल्यावस्था से पौगंड अवस्था में और पौगंड अवस्था से आगे चल के कैशोर अवस्था में। दिन प्रतिदिन कृष्ण का व्रज में सौंदर्य बढ़ते जाता था, और किशोर रूप भगवान का जो है ये नित्य रूप है गोलोक वृंदावन में, इसलिए व्रज में इस आयु को पहुंचने के बाद आगे भगवान की आयु बढ़ती नहीं है, फिर भगवान किशोर रूप में ही दिखाई पड़ते हैं। श्यामम एव परम रूपम, तो भगवान श्री कृष्ण का ये परम रूप है वृंदावन में किशोर अवस्था का रूप, और इस रूप को अक्रूर जी देख रहे हैं। किशोर औ श्यामल श्वेतौ, तो कृष्ण का रंग क्या है, श्यामल सांवला है, और बलराम जी का रंग क्या है, श्वेतौ बहुत गोरे हैं, तो एक काले एक गोरे। वृंदावन में आज भी कृष्ण बलराम को ब्रजभाषा में कभी कभी ऐसे कहते हैं, कारो और गोरो, तो साधारण आप गांव के निवासी होते हैं वृंदावन में, वो कारो छोकरो ऐसे कहते हैं क्योंकि इनका इतना निकट का संबंध होता है कृष्ण के साथ, तो कारो गौरव से ही वो बुलाते हैं कृष्ण बलराम को। तो श्यामल श्वेतौ श्री निकेतौ बृहद भुजौ, श्री निकेतौ अर्थात दोनों के, केवल कृष्ण के नहीं बलराम के भी, क्योंकि द्विवचन औ, तो दोनों के दोनों जो है श्री और लक्ष्मी देवी के निवास स्थान है। बृहद भुजौ, उनकी भुजाएं बहुत मजबूत हैं। सुमुखौ सुंदर वरौ, सुमुखौ बहुत सुंदर मुख है उनका, और उनका सारा अंग जो है, सारा शरीर भी बहुत दिव्य और सुंदर है। बल द्विरत विक्रमौ, और उनको बहुत बलवान हैं और शक्तिशाली हैं। आगे कहते हैं ध्वज वज्र अंकुश अंभोज चिन्ह तैर अंग्रधीर व्रजम, फिर से व्रज शब्द का प्रयोग आता है, तो कहते हैं उनके अंग्री हैं, उनके चरण कमल हैं, उनमें तरह तरह के चिन्ह हैं जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं कल। तो कौन से चिन्ह हैं, ध्वज वज्र अंकुश अंभोज, ये भी कमल का दूसरा नाम है, ये थोड़े बहुत चिन्ह है, वैसे तो अनेक चिन्ह हैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में, तो ऐसे चिन्हों से युक्त श्री कृष्ण के चरण कमल हैं। शोभयन्तौ महात्मानौ सान क्रोश स्मितेक्षणौ, तो ऐसे वो चलते हैं तो सारे व्रज को सुशोभित करते हैं। शोभयन्तौ व्रजम शोभयन्तौ, तो व्रज की शोभा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही अपने चरण चिन्हों को सब जगह डाल रहे हैं, सारे ब्रज भूमि को अंकित कर रहे हैं इन चिन्हों से। सनुक्रोश, सनुक्रोश अर्थात बहुत कृपालु, स अनुक्रोश, स्मिते क्षणो, स्मित अर्थात हल्की मुस्कान, ई क्षणो मतलब आंखें, तो कृपा दृष्टि देते हैं भगवान, जब देखते हैं दोनों कृष्ण बलराम इधर उधर, बड़ी करुणा की दृष्टि होती है उनकी, उनकी दृष्टिपात से सबको ऐसे लगता है कि कितने करुणा के लहरें जो है वो बह रही हैं, अमृत बह रहा है उनके आंखों से, करुणा भरी दृष्टि होती है उनकी और हल्की मुस्कान होती है, स्मितन। तो भगवान की दृष्टि ये भी बहुत विशेष है, क्योंकि भगवान जब देखते हैं कभी कभी विशेष रूप से भगवान की जितने भी दृष्टि हैं, दृष्टिपात है, उनमें जो टेढ़ी दृष्टि है वो सबसे सुंदर मानी जाती है। एक जगह खड़े होकर यूं देखते हैं, यूं देखते हैं, जब खास करके बांसुरी बजा रहे होते हैं तो ये उनकी दृष्टि ऐसे है जो कभी इधर देखते हैं। स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टिम वंशी न्यस्ताधर किशलायाम उज्ज्वलाम चंद्रकेन गोविंदाख्याम हरितनु केशतीर्थोपकंठे मां प्रेक्षिष्ठास्तव यदि सखे बंधु संगै स्थिरंकः। तो गोपियां वृंदावन की आपस में एक दूसरे से बात करती हैं और चेतावनी दे रही हैं एक दूसरे को, खबरदार अस्ति बंधु रंगई ही, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिश्तेदार परिवार मित्रों के साथ संबंध बनाए रखना है, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी भौतिक आसक्तियां टूटे नहीं, तो फिर खबरदार वहां खेशी घाट में नहीं जाना, वहां वंशीवट नाम के स्थान पर यमुना के तट में नहीं जाना, क्योंकि वहां जाने से क्या होगा, वहां जाने से एक व्यक्ति खड़ा हुआ है वहां जिसका नाम है गोविंद, हरि तनु मित, बहुत सुंदर उसका शरीर है, वो हरि भी कहते हैं उसको, और वो क्या कर रहा है, स्मेराम भंगी, वो हस्ती हल्की मुस्कान है उसके चेहरे पे, भंगी त्रय परिचिताम, तीन जगह में उसका शरीर बका हुआ है, सर कमर और घुटने, और ऐसे खड़ा हुआ है, स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टि, उसकी दृष्टि जो है टेढ़ी है, उधर की ओर देख रहे हैं, रंध्रा मेरो, और वैसे बांसुरी भी बजा रहा है, स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टिम वंशी न्यस्ताधर किशलाया, और उनके जो होंठ है वो अभी खिले हुए हैं और उस वंशी में अपना अमृत भर रहे हैं, बहुत सुंदर ध्वनि निकलती है उस बांसुरी से, उज्ज्वलाम चंद्र किरण, और पूर्णिमा की एक रात है और चांद के किरणों से उनका जो कपोल है और चेहरा है जो चमक रहा है तेज से, गोविंदाख्याम हरितनुमितः केशतीर्थोपकंठे मां प्रेक्षिष्ठास, देखो नहीं उसकी तरफ, खबरदार। तो वास्तव में गोपियां कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं, बिल्कुल देखना। कभी कभी संस्कृत साहित्य आदि में ऐसे किया जाता है, जब किसी चीज पे आप जोर देना चाहते हैं कि बिल्कुल नहीं देखना, तो आप ऐसे कहते हो कि देखो, जैसे हम ट्रेन में एक बार जा रहे थे तो दो व्यक्ति आपस में बहस कर रहे थे, तो एक व्यक्ति बोलने जा रहा था, दूसरा उनको बोलने नहीं दे रहा, आपस में उनका कुछ वाद हुआ, किस विषय पे हम बताएंगे नहीं, यहाँ खैर काम की भी बात नहीं है बस। तो दूसरा आदमी फिर इतना हैरान हो गया, फिर कहने लगा दूसरे से, ऐसे ही करते रहो, बीच बीच में बोलते रहो ताकि मैं कुछ ना बोल पाऊं। वो कह रहा है बीच बीच में बोलते रहो, लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है, नहीं बोलना, मुझे बोलने दो थोड़ा, है ना, साधारण भाषा में भी हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो गोपियां कहना चाहती हैं, देखो, अवश्य जाके देखो, ऐसे सौंदर्य को देखना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे साची विस्तीर्ण दृष्टि, ऐसे भगवान की दृष्टि है, यहां पर कृपा दृष्टि सबके ऊपर बरसाते हुए अक्रूर जी कृष्ण बलराम को देख रहे हैं। उदार रुचिरक क्रीड़ो, और उनकी जो क्रीड़ाएं हैं बहुत उदार हैं और बहुत आकर्षक हैं। सृग विनो वन मालिनो, सृग विनो अर्थात उनके गले में मोतियों की माला आदि, कभी रत्नों की माला आदि रहती है। वन मालिनो, दोनों ही वन माला भी पहनते हैं, फूलों की माला, भगवान की मालाएं जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, एक है वनमाला, दूसरी है वैजयंती माला और दूसरी है रत्नमाला या मोतियों की माला। रत्न या मोतियों की माला तो है ही, साथ साथ वनमाला अर्थात वन के विभिन्न वृक्षों से लताओं से पत्ते होते हैं, कोई फूल होते हैं, उनको एकत्र करके जोड़ा जाता है, माला बनाया जाता है, बड़े खुशी से भगवान पहन लेते हैं। और वैजयंती माला जो है ये भी एक विशेष प्रसिद्ध माला है, यह हार है भगवान की, जिसमें पांच प्रकार के फूल होते हैं, मंदार, कुमुद, पारिजात, तुलसी और कमल। ये पांच प्रकार के फूलों से ये वैजयंती माला बनती है और भगवान कृष्ण ये वैजयंती माला पहनते हैं। तो ऐसे अनेक तरह के आभूषण भगवान के रहते हैं। खैर फिर आगे वो बताते हैं, और भी वर्णन इसका हो सकता है। फिर आगे पुण्य गंध अनुलिप्तांगो, कि उनका शरीर जो है उसके ऊपर लेपन है, तरह तरह के गंध है, सुगंध जैसे चंदन का लेप आदि। स्नातव व्रजवासो, इस तरह से वो व्रजवासियों को आकर्षित करते हैं। प्रधान पुरुषो आदौ जगत हेतु जगतपति अवतीर्णो जगत जगत्यर्थे स्वांशेन बल केशवो। प्रधान पुरुषो आदौ, दोनों ही प्रधान पुरुष हैं, कृष्ण और बलराम, दोनों जगत के हेतु हैं, अर्थात जगत की उत्पत्ति उनके कारण होता है और इसलिए वो जगतपति भी हैं। अवतीर्णो जगत अर्थे, वो अवतीर्ण हुए हैं जगत के कल्याण हेतु। स्वांशेन बल केशवो, केशव श्री कृष्ण और उनके स्वांश बलराम दोनों प्रकट हुए हैं जगत के उद्धार के लिए। इस तरह से दोनों स्वर्ण से सुसज्जित पहाड़ों की ओर की तरह दिखाई पड़ रहे थे अक्रूर जी को, और जब वो आए वहां पे, उनको देखा कृष्ण और बलराम को, तो उनसे रहा नहीं गया, रथ को रोक लिया, अपनी बाह्य चेतना इससे आ गई थी तो निकल पड़े, उतर पड़े वहां से। कृष्ण बलराम को उन्होंने पूरा प्रणाम किया। तो 34वें अध्याय में शुकदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, हम पढ़ते हैं। रथातूर्णम अवल अवल अवप्लुत्य सो क्रूर स्नेह विह्वल पात चरणों पांते दंडवत राम कृष्णयो। तो रथ से उतरे, बहुत जल्दी से कूद पड़े नीचे, स्नेह से विवल हो गए थे, और फिर चरण उपांते भगवान के चरणों के निकट ही कैसे गिरे, दंडवत, दंड जैसे गिरता है। ये दंडवत शब्द कहां से आता है कि अब दंड को ऐसे रखिए फिर उसको गिरने दीजिए, कैसे गिरेगा, यूं सीधे गिर जाएगा, तो इसे दंडवत कहते हैं। तो अक्रूर जी ने दंडवत प्रणाम किया कृष्ण और बलराम को, और इतने भाव विभोर हो गए अक्रूर जी आनंद के कारण, क्योंकि आंखें आंसू से भर गए, खुशी के आंसू से भर गए, और सारे अष्ट सात्विक विकार जो है उनके शरीर में प्रकट होने लगे, शरीर में कंपन होने लगा, कंठ कटकट वाक्यों से रुद्ध हो गया, रोंगटे खड़े हो गए इत्यादि। और इतने इतने आनंद की अवस्था में वो कुछ बोल नहीं पाए, और फिर अक्रूर को पहचाना श्री कृष्ण ने, अरे हमारे अक्रूर जी आए हैं, और अपने अपने खुद अपने कर कमलों से उनको पकड़ के पास में ले आए और उनको आलिंगन किया। जब भगवान ने आलिंगन ऐसे कृष्ण भगवान ने आलिंगन किया कि क्योंकि वो अपने शरणागत भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। तो अक्रूर वैसे खड़े रहे अपने सर झुकाए हुए, और उस समय संकर्षण वो भी आए। उन्होंने भी जैसे कि अक्रूर जी ने सोचा था अपने ध्यान में, उन्होंने भी अपने कर कमलों से अक्रूर जी को हाथों से लेकर अपने घर ले गए। वह घर ले जाने के बाद उनको बिठाया, बड़े आदर से स्वागत किया, जलपान आदि कराया, स्वादिष्ट व्यंजन उन्हें खाने दिए, दूध आदि भी दिया जिसमें कि शहद मिलाया हुआ था, और ऐसे श्रेष्ठ आसन में बिठाया। फिर उन्हें एक गाय का भेंट दिया और स्वयं बलराम जी अक्रूर जी के चरणों की मालिश करने के लिए बैठ गए बड़े सम्मान से, और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन अक्रूर जी को खिलाए। जब अक्रूर जी ने ये भोजन या प्रसाद पूरी तरह से ग्रहण कर लिया था, संतुष्ट हो गए थे, तो उस समय मुखवास आदि वो भी दे दिया, तरह तरह के गंध और फूलों की माला आदि भी अर्पण किए बलराम जी ने। और अक्रूर जी तो बड़े आनंद के सागर में डूबे जा रहे थे। फिर नंद महाराज अक्रूर जी के पास आए, ओ प्रिय अक्रूर जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपके परिवार का भरण पोषण कैसे हो रहा है, किस तरह से आप सुरक्षित रह रहे हैं उस दुष्ट कंस के राज्य में। आप तो ऐसे मानिए किसी कसाई के संरक्षण में कोई भेड़िया होते हैं, क्या सुरक्षा होती है उनकी, बेचारे आप सबकी हालत ऐसी है, तो हमें बहुत दुख होता है आप सबके बारे में सोच के। वो क्रूर कंस है, उसने बेचारे देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी, जबकि देवकी देख रही थी, उसकी आंखों के सामने ऐसे किया, इसलिए मैं पूछूं भी कैसे कि आपकी हालत कैसे है मथुरा में। तो खैर, ऐसे मीठे शब्दों से नंद महाराज ने अक्रूर जी के हृदय को बहुत ही आनंद प्रदान किया। अक्रूर जी को वास्तव में लगा कि मैं अब अपने घर में पहुंच गया हूं। जब कोई अतिथि आते हैं हमारे यहाँ तो उनका स्वागत ऐसे ही होना चाहिए। ठीक उसी तरह ये मंदिर भी हम सबका घर है। जब कोई इस मंदिर में आते हैं, ठीक है ये जो भी कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी के साथ किए, हरे के साथ ऐसे नहीं कर सकते, परंतु कम से कम मीठे शब्दों से स्वागत कर सकते हैं और अच्छे व्यवहार से उनको प्रसन्न कर सकते हैं, बिठा सकते हैं, दो अच्छी बातें कर सकते हैं कृष्ण के बारे में, तो ये हम सबका कर्तव्य बनता है। इस तरह से ऐसे मीठे मीठे वचनों से नंद महाराज कृष्ण बलराम और ब्रजवासियों के स्नेह के कारण अपनी यात्रा की थकावट पूरी तरह से भूल गए अक्रूर जी। याद रखिए सारे दिन की यात्रा थी, तो दिन भर यात्रा करने के बाद अक्रूर जी आए थे। अब अक्रूर जी बड़े संतुष्ट होकर वहां बैठे, और इससे अब 38वां अध्याय समाप्त होता है, और अगले वर्ष फिर हम इसके बाद वाले अध्याय से हम शुरू करेंगे, जिसमें कि आगे चल के अक्रूर जब हम देखेंगे कि कृष्ण और बलराम को ले जा पाएंगे या नहीं, और आगे क्या होगा, ये यदि आपको सुनना है तो अगले वर्ष की कृष्ण कथा के आपको अनुष्ठान में आना होगा। कल सुबह कृष्ण जन्म के ऊपर कोई चर्चा करेंगे और कल शाम को भी कथा होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वृंदावन धाम की जय।